प्रिय श्रोता, बाइबल अध्ययन कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। हमें विश्वास है कि आप सब इस बाइबल अध्ययन में सम्मिलित होने के लिए तैयार हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि इन दिनों हम पवित्र शास्त्र बाइबल के नए नियम में से यूहन्ना की पहली पत्री का विस्तार पूर्वक अध्ययन कर रहे हैं और हमें विश्वास है कि इस अध्ययन से आपको आत्मिक लाभ मिल रहा है। इस पुस्तक का मुख्य विषय है संगति। तो आइए अपने वक्ता के साथ आज के इस बाइबल अध्ययन में सम्मिलित हों, सुनते हैं कार्यक्रम सत्य वचन।
प्रिय मित्र, प्रभु यीशु के पवित्र और सामर्थी नाम में आप सबको मेरा नमस्कार। मैं कुशल पूर्वक हूँ। मुझे आशा है कि आप सब भी पिता परमेश्वर की निकटता में रहते हुए अपने जीवन में आनंदित हैं और आज फिर से परमेश्वर के वचन में से सुनने और सीखने के लिए तैयार बैठे हैं। मैं आप सभी श्रोता मित्रों का इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूँ, खास करके अपने उन नए श्रोताओं का जो आज पहली बार हमारे इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं अपने उन श्रोता मित्रों का भी जो पत्र के माध्यम से हमें प्रोत्साहित करते हैं, अपनी गवाहियों को और प्रार्थना के विषयों को हम तक पहुंचाते हैं। प्रभु आप सबको बहुतायत से आशीष दे। मेरे मित्रों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम सब इन दिनों बाइबल में से पहला यूहन्ना की पत्री से अध्ययन कर रहे हैं। आइए इससे पहले कि आज हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ें, प्रार्थना करें और परमेश्वर से आज के अध्ययन के लिए सहायता मांगें। प्रेमी और दयालु पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर समय के लिए जिसे आपने हमारे जीवन में दिया है, ताकि हम फिर से आपके जीवित और सामर्थी वचन का अध्ययन कर सकें। इस समय जब हम आपके वचन में से मनन चिंतन करते हैं, सीखते हैं, तो हमारी प्रार्थना है कि आप हमें से हर एक को अपनी बुद्धि, ज्ञान और समझ प्रदान करें, ताकि जब हम आपके वचन में से सुने तो निश्चित रूप से आपका वचन प्रत्येक के जीवन में कार्य करने पाए। हमारी प्रार्थना उन भाई बहनों के लिए है जो इस समय निराश और परेशान हैं, चिंता और तनाव में हैं। प्रभु जी, आप उनकी सहायता करें, उन्हें छुटकारा दें, उन्हें शांति और आनंद दें, ताकि वे आप में और अधिक बलवंत होने पाएं। धन्यवाद प्रभु हमारी प्रार्थनाओं को सुनने के लिए। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे मित्रों, हमने पिछले अध्ययन में देखा कि परमेश्वर की संतान की दो मुख्य पहचान है, धर्म के काम करने वाला और विश्वासी भाई से प्रेम करने वाला। यह प्रेम क्या है? प्रेम के लिए यूनानी भाषा के अंदर में तीन शब्द अलग अलग तरीके से लिए जाते हैं। पहला यूनानी शब्द है इरोस, जिसका उपयोग नए नियम में नहीं किया गया है। यह यौन संबंधी प्रेम है। इरोस उनके प्रेम का देवता था और एफ्रोडाइट उनकी देवी थी। उनकी उपासना में यौनाचार मुख्य था। इसका उपयोग नए नियम में नहीं है। दूसरा शब्द है फिलियो, अर्थात दोस्ती। इसका अभिप्राय भाईचारे के प्रेम से है। तीसरा शब्द है अगापे। यूहन्ना इसी शब्द का उपयोग करता है। यह परमेश्वर का प्रेम है। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा, यूहन्ना रचित सुसमाचार 3:16 में यूहन्ना कहता है कि हमें आपस में ऐसा ही प्रेम रखना है। बाइबल में इरोस का कोई भी स्थान नहीं है। लिखा है, ना वह जो अपने भाई से प्रेम नहीं रखता। इसका अर्थ है कि हमें अपने विश्वासी भाई से ऐसा प्रेम रखना है कि हम उसकी चिंता करें, हम उसकी सहायता करें। इसका अर्थ यह नहीं कि आप उसके तौर तरीके, उसकी बातों या उसकी रुचियों की चिंता करें। इसका अर्थ यह नहीं कि भागकर उसे गले लगाएं, परंतु उसकी सुधि लें। आप दूसरे विश्वासियों से बैर ना रखें, इसका अर्थ यह नहीं कि आप ऐरे गैरे नथु खैरे की बातों में आ जाएं। आपको आंखें खुली रखना है। हमें प्रभु में अपने भाई के प्रति मन में प्रेम रखना है। हमारा प्रेम कार्य करने वाला प्रेम हो जो लाभकारी काम करता है। तो आइए अब आगे बढ़ते हुए हम लोग पढ़ेंगे पहला यूहन्ना की पत्री 3:11। लिखा है, क्योंकि जो समाचार तुमने आरंभ से सुना वह यह है कि हम एक दूसरे से प्रेम रखें। यूहन्ना अपनी पत्री में आरंभ की बहुत बातें करता है। आरंभ से उसका अभिप्राय है प्रभु यीशु का देह धारण। जो समाचार तुमने आरंभ से सुना वह यह है कि हम एक दूसरे से प्रेम रखें। यूहन्ना प्रभु यीशु की बात की पुष्टि कर रहा है। यूहन्ना रचित सुसमाचार 13:35 में लिखा है, यदि आपस में प्रेम रखोगे तो इसी से सब जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो। यह प्रेम प्रभु यीशु के शिष्यों की पहचान है। यूहन्ना कहता है, मैं तुमसे जो कहता हूं वह कोई नई बात नहीं है, तुमने तो यह आरंभ ही से सुना है। प्रभु यीशु ने हमें यही सिखाया है, शिष्यों ने भी यही सिखाया है। हमने आरंभ ही से सुना है कि हमें आपस में प्रेम रखना है। आज विश्वासियों में परस्पर प्रेम की कमी दिखाई देती है और यही कारण है कि बहुत सारी कलीसियाओं में प्रेम देखने को नहीं मिलता है। पहला यूहन्ना के पत्र 3:12 में हम आगे पढ़ते हैं, और कैन के समान न बने जो उस दुष्ट से था और जिसने अपने भाई को घात किया, और उसे किस कारण घात किया? इस कारण कि उसके काम बुरे थे और उसके भाई के काम धर्म के थे। ध्यान दीजिए, लिखा है कैन के समान न बने जो उस दुष्ट से था और जिसने अपने भाई को घात किया। कैन और हाबिल दो सगे भाई थे, परंतु कैन ने अपने भाई को मार डाला। क्यों? उसे किस कारण घात किया? सिर्फ इस कारण कि उसके काम बुरे थे और उसके भाई के काम धर्म के थे। कैन की समस्या क्या थी? उसकी समस्या ईर्ष्या थी। यह कैन का पाप था। जी हाँ, ईर्ष्या कैन की समस्या का वर्णन करने के लिए उचित शब्द नहीं है। ईर्ष्या में शक का अंश होता है। उदाहरण के लिए, एक पति अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करता है, परंतु उसे शक होता है कि वह उसके साथ विश्वासघात ना करे, तो वह उससे ईर्ष्या करता है। अतः यहां उचित शब्द जलन है। कैन के मन में जलन थी। वह अपने भाई से जलता था, जिसका परिणाम हत्या था। किसी ने अति उचित ही कहा है, संसार का सबसे अधिक विनाशकारी बल है ईर्ष्या और जलन। जलन मनुष्य के मन में होती है। अतः मेरे अनुसार जलन की परिभाषा है, किसी की उन्नति और समृद्धि के प्रति असंतोष तथा बेचैनी, जिसमें कुछ बैर भाव हो और उतना ही लाभ उठाने की मन में लालसा हो। यह कैन का यथार्थ वर्णन है। उदाहरण के लिए, एक स्त्री किसी पुरुष के साहस से जलन नहीं रखती है और एक पुरुष स्त्री की सुंदरता से जलन नहीं रखता है। इसकी अपेक्षा हमारे मन में जलन उस बात की रहती है जिसकी हम लालसा करते हैं। मेरे प्रियो, आज कलीसिया में ईर्ष्या और जलन प्रभु यीशु के प्रयोजन को हानि पहुंचाती है। इस पाप को विश्वासी प्रायः छिपा कर रखते हैं। गायक दूसरे गायक से जलते हैं, प्रचारक एक दूसरे से जलते हैं। कलीसिया में पीठ पीछे बुराई करने का एकमात्र कारण है जलन। कैन के हाथों हाबिल की हत्या का कारण जलन ही था। परमेश्वर ने हाबिल के कार्यों को ग्रहण किया और कैन के कार्यों को नहीं किया, क्योंकि वह जलन रखता था। पहला यूहन्ना की पत्री 3 अध्याय उसके 13 पद में लिखा है, हे भाइयों, यदि संसार तुमसे बैर करता है तो अचंभा न करना। यूहन्ना कहता है कि यदि संसार आपको स्वीकार नहीं करता तो यह न सोचे कि कोई विचित्र या अनहोनी बात हो गई है। यूहन्ना अपनी संपूर्ण पत्री में एक ही बात स्पष्ट करता है कि वह प्रभु यीशु ही की शिक्षाओं को दोहरा रहा है। यूहन्ना रचित सुसमाचार 15 अध्याय उसके 18 और 19 पद में प्रभु यीशु ने कहा, यदि संसार तुमसे बैर रखता है तो तुम जानते हो कि उसने तुमसे पहले मुझसे बैर रखा। यदि तुम संसार के होते तो संसार अपनों से प्रेम रखता, परंतु इस कारण कि तुम संसार के नहीं वरन मैंने तुम्हें संसार में से चुन लिया है, इसीलिए संसार तुमसे बैर रखता है। मेरे प्रियो, सेवा क्षेत्र में हमारी यही मुख्य समस्या है। मैंने कभी इस बात को अच्छा नहीं माना जब किसी ने मुझसे कहा कि मैं किसी स्थान में बड़ा जनमान्य प्रचारक था। मैं एक विशेष समूह के साथ मान्य होना नहीं चाहता, क्योंकि प्रभु यीशु भी उनमें मान्य नहीं था। टीवी पर ऐसे प्रचारक होते हैं जो मीठी मीठी बातें करके जन समूह से प्रशंसा प्राप्त करते हैं, जबकि यीशु मसीह के लिए वहां कोई स्थान नहीं। क्या स्वर्ग में इस बात का दुख नहीं मनाया जाएगा? परमेश्वर की संतान को समझ लेना है कि संसार उससे घृणा करेगा। क्रूस की ठोकर तो है, परंतु हमें उसे वृहत रूप प्रदान करने से सावधान रहना है। हम आपत्तिजनक तथा विषाक्त न हो। अनेक विश्वासी इस कारण अस्वीकार्य नहीं है कि वे विश्वासी हैं, परंतु इसलिए कि उनका व्यवहार आपत्तिजनक है। यदि वे मसीही जन न हो तो भी उनका स्वभाव ऐसा ही होगा। अतः हम सुनिश्चित करें कि यदि हमारा तिरस्कार किया जाता है तो केवल उस कारण से ही हो जिस कारण से प्रभु यीशु का तिरस्कार किया जाता है। मेरे प्रियो, इसे ध्यान में रखने की अति आवश्यकता है। पहला यूहन्ना की पत्री 3 अध्याय उसके 14 पद में हम लोग पढ़ते हैं, लिखा है, हम जानते हैं कि हम मृत्यु से पार होकर जीवन में पहुंचे हैं, क्योंकि हम भाइयों से प्रेम रखते हैं। जो प्रेम नहीं रखता वह मृत्यु की दशा में रहता है। लिखा है, हम जानते हैं कि हम मृत्यु से पार होकर जीवन में पहुंचे हैं। आप जान सकते हैं कि आप परमेश्वर की संतान हैं या नहीं। यदि आप नहीं जान सकते तो यह एक भारी झूठ है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि हम मृत्यु से होकर पार होकर जीवन में पहुंचे हैं। यह हम कैसे जानेंगे? क्योंकि हम भाइयों से प्रेम रखते हैं। क्या आपके मन में भाइयों के प्रति प्रेम है या जलन है? इसी से आप पहचाने जाएंगे। मेरे महान अनुभव में से एक है भ्रमणशील प्रचार करना। एक बार मुझे बहुत ही अकेलापन महसूस हो रहा था। मैं घर से बाहर प्रचार करने गया हुआ था और मेरी पत्नी भी साथ नहीं थी। मैं भोजन के लिए एक घर में गया। मैंने अभी भोजन का विवरण दिया ही था कि एक व्यक्ति मेरे पास आकर बड़े ही मृदु भाव से कहने लगा, आप सत्य वचन के रेडियो वक्ता हैं। मैंने आपको कभी नहीं देखा, परंतु मैं आपका कार्यक्रम सुनता हूं। और वह मेरे पास बैठ गया। उसके साथ मैंने बहुत ही अच्छा समय बिताया। क्यों? क्योंकि वह परमेश्वर की संतान था और मैं भी परमेश्वर की संतान था। वह नहीं जानता था कि मैं वहां प्रचार सभा में प्रचार करने के लिए आया था। वह अपनी पत्नी के साथ सभा में आया। वह वास्तव में विश्वासी भाई था। सेवा में होना और अच्छे अच्छे विश्वासियों से भेंट करना वास्तव में एक महान अनुभव है। ऐसे ही एक बार मेरी भेंट किसी अनजान हॉकी खिलाड़ी से हुई और हमने अति उत्तम सहभागिता का समय बिताया। यही तो यूहन्ना कह रहा है, क्या आप विश्वासियों से प्रेम करते हैं? जब आप किसी से प्रभु यीशु के विषय चर्चा करते हैं, तब आपके साथ एक विश्वासी भाई या बहन है। मेरे मित्रों, लिखा है, जो प्रेम नहीं रखता वह मृत्यु की दशा में रहता है। कुछ लोगों में परमेश्वर की संतान के लिए प्रेम नहीं होता है, परंतु हम में प्रेम होना अति आवश्यक है। मुझे बाइबल सभाओं की प्रतीक्षा रहती है, क्योंकि वहां अनेक ऐसे जन होते हैं जिनसे मेरी भेंट पहले कभी नहीं हुई है, परंतु हम उस समय अद्भुत सहभागिता करते हैं। क्यों? क्योंकि हम एक दूसरे से प्रेम करते हैं। यह हमारे उद्धार का प्रमाण है। जहां तक आपके मन का प्रश्न है, इससे बड़ा प्रमाण अन्य कोई नहीं है। पहला यूहन्ना के पत्री 3 अध्याय उसके 15 पद में लिखा हुआ है, जो कोई अपने भाई से बैर रखता है वह हत्यारा है, और तुम जानते हो कि किसी हत्यारे में अनंत जीवन नहीं रहता। ध्यान दीजिए, लिखा है, जो कोई अपने भाई से बैर रखता है वह हत्यारा है। यह मैं नहीं, यूहन्ना कहता है। वह प्रभु यीशु का ही उदाहरण दे रहा है, मत्ती रचित सुसमाचार 5 अध्याय उसके 21 और 22 पद में, तुम सुन चुके हो कि पूर्व काल के लोगों से कहा गया था कि हत्या ना करना, और जो कोई हत्या करेगा वह कचहरी में दंड के योग्य होगा। परंतु मैं तुमसे यह कहता हूं, जो कोई अपने भाई पर क्रोध करेगा वह कचहरी में दंड के योग्य होगा, और जो कोई अपने भाई को निकम्मा कहेगा वह महासभा में दंड के योग्य होगा, और जो कोई कहे अरे मूर्ख वह नरक की आग के दंड के योग्य होगा। मेरे प्रियो, ये अत्यधिक कठोर शब्द हैं। प्रभु यीशु ने कहा कि यदि आपके मन में अपने भाई के प्रति बैर भाव है तो आप हत्यारे हैं। ईर्ष्या और जलन बैर भाव उत्पन्न करती है, और बैर भाव हत्या के बराबर है। आज कितने हत्यारे हैं? इस मानदंड के अनुसार तो जितने हत्यारे जेल में हैं, उनसे कहीं अधिक बाहर घूम रहे हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि आपको यह तो समझ में अवश्य ही आ गया होगा कि इस गद्यांश में यह नहीं कहा गया है हत्यारे का उद्धार नहीं होगा। प्रभु यीशु ने सब पापों का दंड चुका दिया है, हत्या के पाप का भी, परंतु उद्धार पाने के बाद मनुष्य बैर भाव का जीवन नहीं जीता है। मैं आपको स्मरण कराना चाहता हूं कि यूहन्ना विश्वासियों के 2 स्वभावों की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहता है। परमेश्वर की संतान हो जाने के बाद भी आप पुराने स्वभाव से मुक्त नहीं होते हैं। आप में 2 स्वभाव होते हैं, पुराना स्वभाव और नया स्वभाव। हमने देखा है कि केवल नया स्वभाव ही परमेश्वर को प्रसन्न करता है। प्राकृतिक मनुष्य अर्थात स्वाभाविक मनुष्य परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकता। शारीरिक प्रवृत्ति परमेश्वर की विरोधी है, अतः विश्वासी कभी कभी प्रार्थना करना चाहता है तो कभी कभी प्रार्थना करना नहीं चाहता है। मेरे मित्रों, क्या विश्वासी भटक सकता है? क्या विश्वासी आराधना कर सकता है? दोनों बातें सच हैं। मैंने देखा है कि मेरा स्वभाव भटकने का है। मेरा एक स्वभाव और है, आराधना करने का। परमेश्वर कहता है कि यदि तू मेरी संतान है तो मेरा स्वभाव प्रकट करेगा, तू वह नया स्वभाव प्रकट करेगा जो मैंने तुझे दिया है। और हर एक विश्वासी के लिए यह अनिवार्य है कि वह परमेश्वर के स्वभाव को प्रकट करे। पहला यूहन्ना की पत्री 3 अध्याय उसके 16 पद में लिखा है, हमने प्रेम इसी से जाना कि उसने हमारे लिए अपने प्राण दे दिए और हमें भी भाइयों के लिए प्राण देना चाहिए। लिखा है, हमने प्रेम इसी से जाना। मेरे प्रियो, परमेश्वर कैसे प्रेम करता है? उसने हमारे लिए, जी हाँ, हमारे लिए अपने प्राण दे दिए। हमारे समक्ष परमेश्वर ने यह एक प्रतिमान रखा है, एक नमूना रखा है। तब वह कहता है, हमें भी भाइयों के लिए प्राण देना चाहिए। मैं आपके बारे में तो नहीं जानता, परंतु मैं अभी तक इस स्तर पर नहीं आ पाया हूं। क्या आप ऐसे लोगों को जानते हैं जो आपके लिए अपनी जान को जोखिम में डालेंगे, या आप किसी के लिए अपनी जान की बाजी लगाएंगे? ऐसा स्वभाव दिखाई नहीं देता है। परंतु जब मेरा एक मित्र कैंसर से पीड़ित था, तब लोगों ने लिखा कि उसका कैंसर वे अपने ऊपर ले लेना चाहते हैं। वे चाहते थे कि वे उसकी सहायता करें। मेरे प्रियो, यह अद्भुत प्रेम है। मैंने ऐसा कोई अन्य मनुष्य नहीं देखा जो इस सीमा तक जाए, या उनके लिए संभव नहीं था, क्योंकि रोग एक ऐसा क्रूस है जो रोगी ही उसे उठाना चाहता है, या ना चाहते हुए भी उसे ही उठाना पड़ता है। परंतु उनकी मनोकामना ने उससे मार्मिक प्रभाव डाला। मेरे प्रियो, यह एक वास्तविक प्रमाण है कि परमेश्वर हमसे प्रेम करता है। उसने अपना पुत्र दे दिया कि हमारे स्थान पर मरे। यह एक मानक है, वह हमारा आदर्श है। अतः यूहन्ना कहता है कि हम भाइयों के लिए अपनी जान दें। जब तक हम इस उच्च स्तर तक न उठे, हम अपने भाई के प्रति प्रेम प्रदर्शन नहीं कर पाते हैं। और यही कारण है कि आज हम अपने भाइयों के लिए प्राण देने में सक्षम नहीं हैं। मेरे मित्रों, आइए आज हम इस वचन के प्रकाशन में अपने जीवन को फिर से एक बार जांच करके देखें। क्या आज मैं अपने भाई से प्रेम करता हूं? अपने पड़ोसी से प्रेम करता हूं? क्या मेरा जीवन एक आदर्शमय जीवन है? क्या मैं दूसरों के लिए अपने प्राण दे सकता हूं? एक बहुत बड़ी चुनौती हमारे सामने है। यूहन्ना हमें बताता है कि परमेश्वर हमसे चाहता है कि हम प्रेम करें। मेरे मित्रों, हो सकता है कि आपके घर में आपके माता पिता, भाई बहन, पति पत्नी और एक परिवार में आप रहते हैं, और आपके बीच में किसी प्रकार का मन मुटाव है। आप एक दूसरे को देखना भी पसंद नहीं करते हैं, उठना बैठना नहीं चाहते हैं। परंतु परमेश्वर का वचन आज बहुत स्पष्ट रीति से आपसे और मुझसे कहता है कि हम इन मन मुटावों को अपने जीवन से निकाल दें। यदि हम इसे रखते हैं तो निश्चय जाने कि आप शैतान की संतान हैं, क्योंकि शैतान नहीं चाहता कि आप एक दूसरे को क्षमा करें। वह नहीं चाहता कि आप एक दूसरे से प्रेम करें। परंतु इस बात को जान लें कि परमेश्वर ने अपने एकलौते पुत्र यीशु को इस जगत में इसीलिए भेज दिया ताकि वह आपके पापों के लिए दंड उठाए। जी हाँ, यीशु आपके इन पापों के लिए दंड उठा चुका है। इसलिए आप एक दूसरे को क्षमा करें, एक दूसरे से माफी मांगें और परमेश्वर के निकटता में आ जाएं, क्योंकि वही आपकी सहायता कर सकता है। क्योंकि जब तक आप एक दूसरे को क्षमा नहीं करेंगे, आप उनसे प्रेम नहीं कर पाएंगे। परमेश्वर का वचन कहता है कि एक दूसरे से प्रेम करो। क्या आप ऐसा करेंगे? क्या आपके साथ कोई और समस्या है? प्रभु के पास आएं, अपने आप को उसके सामने रखें और निश्चय जाने कि वह आपकी सहायता करने के लिए तत्पर है। मेरे प्रियो, यहां पर आज हमारे अध्ययन का समय समाप्त होता है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आज के इस अध्ययन के द्वारा आपने अपने जीवन में प्रेम को पा लिया है। आप एक दूसरे से प्रेम करेंगे और एक दूसरे की सहायता करेंगे। प्रभु आप सबके साथ हो।
अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सत्य वचन। हमें विश्वास है कि आज का ये अध्ययन आपके आध्यात्मिक जीवन के लिए फायदेमंद सिद्ध हुआ है। हम आपसे जानना चाहेंगे कि इस अध्ययन से आपको और क्या क्या आशीष मिली हैं। हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आपको देने के लिए हमारे पास नया नियम एवं पूरी बाइबल उपलब्ध है। यदि आप इसे प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें इस पते पर लिखें, कार्यक्रम सत्यवचन, TWR इंडिया, पोस्ट बॉक्स नंबर 317, लखनऊ 226001, उत्तर प्रदेश। पता एक बार फिर से सुन लीजिए, कार्यक्रम सत्यवचन, TWR इंडिया, पोस्ट बॉक्स नंबर 317, लखनऊ 226001, उत्तर प्रदेश। आप इस नंबर पर हमें SMS या टेलीफोन भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9198210018। एक बार फिर से सुन लीजिए, हमारा मोबाइल नंबर है 9198210018। इसके अलावा आप हमें ईमेल भी भेज सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hindittb@twr.in, hindittb@twr.in। और अब इसी के साथ कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए, प्रभु आपको आशीष दे।
तेरे चरणों में मैं झुका, से मन में जीवन जल मुझको पिला। यीशुआ, यीशुआ, तू ही है सच्चा प्रभु। यीशुआ, यीशुआ, तेरे चरणों जग भर का पालनहारा, हर जरूरत को तू जानता है प्रभु, और कमी पूरी करता सदा।